मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 5 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हम लोग एक बहुत ही मजेदार और बड़े व्यावहारिक और रोजमर्रा से जुड़े हुए विषय पर बात कर रहे थे और विषय यह था कि एक पढ़ा लिखा और तार्किक व्यक्ति पूजा क्यों करता है। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी और फिर मैंने सच पूछिए तो बजाय इसके कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देता, आप लोगों से ही मैंने एक प्रश्न पूछ लिया था और उसके उत्तर डेफिनेटली आप लोगों ने अपने अपने ढंग से तैयार किए होंगे। और मेरा प्रश्न यह था कि आप खुद बताएं कि हम पूजा क्यों करते हैं। इस पर आकर के मित्रों हमारी बात खत्म हुई थी। आइए अब मैं इसका जवाब अपनी तरफ से देने की कोशिश करता हूं और मैं पहले से ही बता दूं मित्रों कि यह जो उत्तर है यह पूरी तरह से मेरा अपना उत्तर है। आपको अपने उत्तर के हिसाब से अपनी स्थितियों का मूल्यांकन करने और आचरण में लाने का पूरा अधिकार है। बट नेचुरल है कि मेरे उत्तर मेरे अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से होंगे और आपके उत्तर अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से होंगे। और स्वाभाविक है कि जब हम पूजा जैसे विषय पर बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भी शामिल हो जाते हैं। घर से, परिवार से, वातावरण से हमें कैसे संस्कार मिले हैं और साथ ही साथ फिर हमारी जो तार्किक क्षमता है वह तो अपनी भूमिका निभाती ही है कि हम किसी भी विषय को कितने तार्किक तरीके से सोच पाते हैं, देख पाते हैं और उसके कार्य कारण संबंधों को जोड़ पाते हैं। तो डेफिनेटली इसमें जितने भी लोग होंगे, जितने भी सोचने वाले व्यक्ति होंगे, जितने भी उत्तर होंगे, सब एक दूसरे से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही अलग होंगे, लेकिन अलग अलग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और मैं समझता हूं कि यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। फ्रेंड्स, इसको लेकर के मुझे कुछ मेल मिले हैं और मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम मेरे इस विषय को सुनने के बाद मेरे प्रिय आप सबने इस पर कुछ न कुछ सोचना शुरू किया और सोचकर जो आपको अपने उत्तर मिले उनसे मुझे अवगत भी कराया। इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मैं अपने उत्तर को आपके सामने सीधे सीधे नहीं रख रहा हूं, मैं थोड़े से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात यहां कहना चाहूंगा। मैं चार चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं और इसमें से फिर आप अपने ढंग से चीजों को जोड़कर, घटाकर, एक दूसरे से मिलाकर निकालने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि अभी तक आपने जो अपना उत्तर तैयार किया हो उसमें इस तरीके से सोचने के बाद थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, हु नोज, कौन जानता है, करके देखिए। मैं आपके सामने चार बातें रख रहा हूं कि ये जो चार चीजें हैं इन चारों का विधान किस लिए किया गया है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हम इन चारों को कहीं ना कहीं मिला करके एक जैसा समझ लेते हैं और वहां मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाती है, फिर उनकी विशुद्धता नहीं बची रहती। हम उन्हें अलग अलग खंड खंड में बांटकर बहुत सही तरीके से, फोकस्ड तरीके से नहीं देख पाते और उसी के कारण फिर हमारी जो दृष्टि है वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है क्योंकि चीजें साफ नहीं हो पाती। जैसे धर्म, राइट? ये धर्म बेसिकली क्यों लाया गया है? देखिए, चाहे आप पूरा प्राचीन काल को ले लें, मध्य काल को ले लें या आधुनिक काल को भी ले लें, जो धर्म की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स, मूल रूप में वो हमारे आचरण को व्यवस्थित करने के लिए की गई है। यानी कि धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे आचरण को ठीक करती है। यानी कि धर्म की बातें अगर हमारे आचरण में नहीं आ रही हैं तो ये मान करके चलिए कि फिर वो धर्म है ही नहीं, फिर वो धर्म का ढोंग है, ढकोसला है, केवल कहने का एक विलास है, मानसिक विलास है, केवल एक बौद्धिक विमर्श है, आप जो भी नाम देना चाहे, दिखावा है, पाखंड है। शुरू में जो धर्म की व्यवस्था की गई है, आप एंशिएंट इंडिया उठा करके देखिए या धर्म की उत्पत्ति के तत्वों को जानने की कोशिश कीजिए, तो ये मनुष्य के आचरण को नियमित करने का एक सामाजिक विधान है। यानी कि समाज को जब लगा कि नहीं, मनुष्य के व्यक्तित्व को, चरित्र को, उसके कार्य को एक थोड़ा सही रूप दिया जाना चाहिए, तो उसने धर्म की स्थापना की। और देखिए, धर्म स्थापनार्थाय, तो कृष्ण भी जो धर्म की स्थापना के लिए अपने अवतरित होने की बात कहते हैं, तो वो कौन सा धर्म था? क्या हिंदू धर्म था, क्या क्रिश्चियन था, क्या इस्लाम था, या मानव धर्म था, या क्या था? आचरण ही तो भ्रष्ट हो गया था ना महाभारत काल में, उसको ठीक करने के लिए। तो धर्म आचरण पर प्रभाव डालने वाला तत्व है, पहली बात। दूसरी बात, हम अब आते हैं अध्ययन, पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये किसके लिए है? ये मस्तिष्क के लिए है, ये हमारे दिमाग के लिए है, ये हमारे थॉट्स के लिए है, सोच के लिए है। देखिए, बुद्धि या कह लीजिए ब्रेन नामक तत्व तो हम सबके अंदर है, हम सबकी खोपड़ी में एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं ब्रेन, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत सोचने समझने की क्षमता अपने आप आ जाती है, हम जैसे जिस वातावरण में रहते हैं। लेकिन इसको डेवलप कैसे करें, इसको और ज्यादा शक्तिशाली और क्षमतावान कैसे बनाएं, ताकि ये और भी अधिक फैलाव के साथ, और भी अधिक गहराई के साथ, ब्रिलियंसी के साथ, चमक के साथ काम कर सके। इसके लिए शिक्षा का विधान किया गया, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा हमें सोचने समझने की क्षमता देती है। देखिए, शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का मतलब है कि हम अपने अंदर एक किसी भी चीज के बारे में सोचने समझने की एक नई क्षमता विकसित करें, और उस सोचने समझने के आधार पर फिर अपने जीवन को ढालें। तो ये देखिए, ये भी जीवन से ही जुड़ा हुआ मामला है। आजकल हम थोड़ा इसे नौकरी से जोड़कर देखते हैं, थोड़ा क्या, पूरी तरह से ही नौकरी से जोड़ करके देखते हैं। अदरवाइज जो प्राचीन शिक्षा पद्धति, आप देखिए कि उसका क्या उद्देश्य था। और आपको मालूम होगा कि धर्म भी शिक्षा का एक अंग था, कि ठीक है, शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को बताया जा सके कि धर्म क्या होता है। ये मस्तिष्क का विधान, शिक्षा। तो दोस्तों, धर्म का विधान आचरण या कार्य, अध्ययन का विधान मस्तिष्क। इसने विधान जो किया अध्ययन ने, कि मस्तिष्क ठीक हो जाए, लोगों का मस्तिष्क उर्वरक हो जाए। अब मैं तीसरी चीज पर आता हूं, और वह है अध्यात्म। अध्यात्म किसका विधान है? अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म का संबंध है आत्मा से। अब ये आत्मा क्या है, कैसे है, मित्रों यहां मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस पर गया तो मूल विषय से भटकना हो जाएगा। आत्मा एक बहुत ही अदृश्य चीज है, एक बहुत ही सूक्ष्म चीज है भी या नहीं भी है, ये डिस्प्यूटेड है, विवादास्पद है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो हमारी चेतना है, कहीं ना कहीं वो आत्मा ही है। चेतना जितनी विशुद्ध होती चली जाएगी, उतनी ही हमारी आत्मा उठती चली जाएगी, ऊपर उठती चली जाएगी। तो यह है अध्यात्म। तो अध्यात्म कोई अलग से विधान नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक आंतरिक अनुभूति है ना, यह एक जीवन की पद्धति है, अपने आप में लाइफ स्टाइल है अध्यात्म। अब चौथा है फ्रेंड्स, जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, वह है पूजा। पूजा मूलतः हमारे भाव जगत की एक व्यवस्था है, इमोशनल सिस्टम, या इमोशनल, हमारे इमोशंस को ठीक ठाक करने की एक प्रणाली। अगर हम इन सारी चीजों को दो भागों में बांट दें, तो देखिए, हम जो मनुष्य हैं उसके दो पार्ट हैं। एक है हमारा मस्तिष्क, जिसमें तर्क उठते हैं, जिसमें विचार उठते हैं, और दूसरा है हमारी भावनाएं, जिसमें प्रेम, करुणा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं पैदा होती हैं। ये भाव जगत है, और दोनों अपनी अपनी जगह सच है। ये नहीं कि जो यथार्थ में दिख रहा है वही सच है, नॉट एट ऑल। जो हम अनुभव कर रहे हैं वह भी सच है, और उतना ही बड़ा सच है जितना कि दिखाई देने वाला यथार्थ। दोनों के सच में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि जो प्रेम है, जो ईर्ष्या है, इन सब, ये सब हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे एक्शन के माध्यम से तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, ये प्रेम में डूबा हुआ है, ये क्रोधित है, गुस्से में है, ये नाक भौ सिकोड़ रहा है। देखने के बाद पता लग जाता है कि इसके अंदर किस तरह की भावनाएं अभी उठी हुई हैं। तो ये जो भावनाएं हैं, इसमें से अच्छी भावनाएं हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतरें, या यूं कह लीजिए कि अच्छी भावनाओं का विकास हो, और जो बुरी भावनाएं हैं उनका विनाश हो, अगर विनाश नहीं भी हो तो कम से कम ये कम होती चली जाए, दबी रहें। इसके लिए मित्रों, जो विधान किया गया है वो पूजा का विधान है। इसके लिए और भी विधान किए गए हैं। मैं जितने भी कला साहित्य संस्कृति के तत्व हैं इन सबको भाव की व्यवस्था करने वाला विधान मानता हूं। देखिए जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो कहीं खो जाते हैं, गीत सुनते हैं तो मगन हो जाते हैं, नाचते हैं तब देखिए क्या होता है, या नाचते हुए किसी को देखते हुए हमारे अंदर का मयूर नाचने लगता है। साहित्य पढ़ते समय भी जब आप कहानी पढ़ते हैं, जब आप उपन्यास पढ़ते हैं, जब आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं, जब आप गजल सुनते हैं तो आप देखिए कि आप कैसे अंदर से उद्वेलित हो जाते हैं, आप उनसे एकदम जुड़ जाते हैं। तो ये अंदर से जुड़ना क्या है, ये हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं जो गड़बड़ हो गई हैं, इधर उधर उथल पुथल हो गई है, उनको ठीक करने का एक तरीका है। तो मुझे ये लगता है मित्रों कि पूजा भी मूलतः हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो अच्छी भावनाएं हैं, पूजा करते समय उनका विकास हो जाता है, या कह लीजिए कि वो पैदा हो जाती है। जैसे मैं जिम जाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक इसी तरह से मैं 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जो जितनी भी पूजा करता है वह मेरे एक तरह से भाव जगत का एक जिम ही है। मैं वैसे तो दिन भर उलझा रहता हूं, दबाव में हूं, तनाव में हूं, लेकिन वो 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट का जो वक्त है वह मेरा अपना वक्त है। उस समय मैं अपने साथ हूं, अदरवाइज अपने साथ रहने का तो मौका ही नहीं मिलता। और मैं वहां फिर एक वातावरण की रचना करता हूं, एक खूबसूरत वातावरण की रचना करता हूं। देखिए इस धरती पर फूल किसने खिलाए हैं, अगर आप उस धार्मिक मस्तिष्क से बात करें तो ईश्वर ने खिलाए हैं, परमात्मा ने खिलाए हैं, आपके फूल की उसे क्या जरूरत है। जिसने सूरज और चांद आकाश में दे रखे हो, जिससे पूरा जगत रोशन हो रहा हो, उसे दीपक, हमारे द्वारा दीपक दिखाए जाने की क्या जरूरत है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो किसे चाहिए, ये हमें चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, चाहे वो सुंदर फूल हो, चाहे अगरबत्ती से निकलने वाली सौंधी सौंधी प्यारी महक हो, उठता हुआ धुआं सा हो, चंदन की महक हो, चंदन की का लालित्य हो, चंदन की कोमलता हो, ये सारी चीजें ये क्या है, आपको नहीं लगता कि ये वैसे भी हमको अच्छी लगती हैं? तो इन सारी अच्छी अच्छी चीजों को जुटा करके हम एक वातावरण की रचना करते हैं, खूबसूरत वातावरण की रचना करते हैं, और वहां हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, अपने साथ हो लेते हैं और अपने भाव जगत को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों ये तब होगा जब पूजा हमारे लिए ढोंग न रहे, ये तब होगा जब पूजा हमारे लिए रूटीन न बन जाए, एक मोनोटोनस, एक नीरस कार्य न बन जाए, आप उसे एंजॉय करें, उसका आनंद लें, और सबसे बड़ी बात है कि आप उसे महसूस करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो भाव जगत है वो प्रबल होता चला जाता है, कोमल होता चला जाता है, और यूं कह लीजिए कि धीरे 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 हम एक अच्छे इंसान बनने की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों मेरे लिए पूजा का यही अर्थ है। आप सबके क्या अर्थ हैं, आप सब अपने अपने ढंग से इस पर विचार करें, और खासकर मुझे जो अपनी बात आप सबसे करनी थी और जो प्रश्न मुझसे पूछा गया था उसका जो जवाब मुझे देना था, इसके माध्यम से मित्रों मैंने केवल अपना उत्तर देने की कोशिश की है। अब इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।